अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर एवं टीम रेडियो साई के प्रिय सदस्य श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी।
मधुवन संचारि श्याम मुरारि।
रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने भगवान कृष्ण की वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं।
मधुवन संचारी श्याम मुरारी श्री मधुसूदन मुरली धारी। मधुवन संचारी श्याम मुरारी माधव मोहन मयूर मुकुटधर मथुरा नाथा प्रभु गिरिधारी। मथुरा नाथा साई गिरिधारी।
आज की कक्षा के लिए इस भजन को डी मध्यम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे जी या सफेद दो का मध्यम भी कहते हैं।
मधुवन संचारी श्याम मुरारी।
मधुवन संचारी श्याम मुरारी।
मधुवन संचारी श्याम मुरारी।
मधुवन संचारी श्याम मुरारी।
श्री मधुसूदन मुरलीधारी।
श्री मधुसूदन मुरलीधारी।
श्री मधुसूदन मुरलीधारी।
श्री मधुसूदन मुरलीधारी।
मधुवन संचारी श्याम मुरारी।
मधुवन संचारी श्याम मुरारी।
माधव मोहन मयूर मुकुटधर।
माधव मोहन मयूर मुकुटधर।
माधव मोहन मयूर मुकुटधर।
माधव मोहन मयूर मुकुटधर।
मथुरा नाथ प्रभु गिरिधारी।
मथुरा नाथ प्रभु गिरिधारी।
मथुरा नाथ साई गिरिधारी।
मथुरा नाथ साई गिरिधारी।
मधुवन संचारी श्याम मुरारी।
कहरवा ताल और अधिकांशतः राग रागेश्री पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद आइए अब रुक करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। इस भजन में प्रयुक्त तकरीबन सभी शब्दों के अर्थों से हम परिचित ही हैं, लेकिन फिर भी हम इस भजन की एक दो पंक्तियों में निहित भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। श्याम मुरारी। श्याम भगवान कृष्ण को कहते हैं और मुरारी कहकर उन्हें इसीलिए संबोधित किया जाता है क्योंकि उन्होंने मुर नामक दैत्य का वध किया था। वैसे मुर शब्द का अर्थ होता है आवरण। लाक्षणिक तौर पे हम कह सकते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप अज्ञान के आवरण से ढका हुआ है। हम अपने आप को शरीर ही समझते हैं, जबकि वास्तव में हम आत्मा हैं जिसका कभी अंत नहीं होता, वो शाश्वत है। और भगवान की कृपा से हमारा अज्ञान रूपी मुर स्वरूप ये आवरण हट जाता है, इसीलिए वे मुरारी हुए। मधुसूदन। इसका शाब्दिक अर्थ है कि भगवान ने मधु नामक राक्षस का संहार किया था, इसीलिए उनका नाम मधुसूदन पड़ा। लेकिन वेदांत के अनुसार मधु शब्द का प्रयोग कर्मफल के लिए किया जाता है। क्योंकि भगवान उन सभी लोगों के कर्मफल मिटा देते हैं जो उनकी समर्पण भाव से भक्ति करते हैं, अतएव उन्हें मधुसूदन कहा जाता है। भगवान बाबा कहते हैं कि मधु अर्थात शहद से भी मीठा क्या है मनुष्य के लिए, उसका अहंकार सबसे मीठा है। भगवान इस अहंकार को समूल नष्ट कर देते हैं, इसीलिए वे मधुसूदन हैं। श्री भगवान कहते हैं कि अहंकार जो बहुत मीठा लगता है उसका निवारण भगवान ही कर सकते हैं, इसीलिए उनका उपदेश है कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और अहंकार का त्याग कर देना चाहिए, इस प्रकार भगवान के समीप बढ़ते जाना चाहिए। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम का उल्लेख श्री कस्तूरी जी ने अपनी आत्मकथा द लविंग गॉड में किया है। एक बार जब वे अपने उत्तर पूर्वी प्रदेशों पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा इत्यादि राज्यों की समितियों का दौरा करके लौट रहे थे तो उन्हें बाबा का संदेश मिला कि वे हैदराबाद से हवाई जहाज द्वारा मुंबई में धर्मक्षेत्र पहुंचकर बाबा के आगमन की प्रतीक्षा करें। बाबा की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए कस्तूरी जी प्रफुल्लित मन से मुंबई पहुंचे और दो दिनों तक बड़े उत्साह से सोचते रहे कि कैसे वे स्वामी के संगठन के सेवादल सदस्यों द्वारा जनहितार्थ किए जा रहे सराहनीय कार्यों का आंखों देखा ब्यौरा उन्हें देंगे। स्वामी धर्मक्षेत्र पहुंचे और विश्राम हेतु अपने भवन जाते हुए कस्तूरी जी को देख उन्होंने पूछा, कब आए? स्वामी, दो दिन पहले, कस्तूरी जी ने उत्तर दिया। स्वामी कमरे में चले गए और कस्तूरी जी पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन स्वामी ने कमरे के द्वार बंद कर दिए। कस्तूरी जी अपने कमरे में लौट गए। रात्रि भोजन के समय स्वामी सभी के साथ आनंदपूर्ण वार्तालाप में मग्न थे, लेकिन उन्होंने कस्तूरी जी की ओर देखा तक नहीं, जबकि कस्तूरी जी बाबा के सामने ही बैठे हुए थे। बाबा का ये रुख बहुत ही अप्रत्याशित था। कस्तूरी जी इस बारे में जानते तो थे, लेकिन ये उनके लिए तो नया ही था। वे समझ गए कि उनकी किसी गलती की वजह से स्वामी उनसे नाराज हैं। कस्तूरी जी की भूख प्यास मिट गई और नींद भी उड़ गई। वे अत्यंत व्यथा से भरकर बेचैन हो गए। उन्हें लगा कि अब वे भगवान बाबा के प्रवचनों का अनुवाद करने के स्वर्णिम अवसर से भी वंचित हो जाएंगे। हालांकि भगवान ने ये दंड उन्हें नहीं दिया, परंतु बेरुखी में कोई कमी भी नहीं रख छोड़ी। एक दिन रात्रि भोज के बाद कस्तूरी जी ने अपने कमरे में बाबा को एक पत्र लिखा, किंतु उसके शब्द कस्तूरी जी के आंसुओं से धुल गए। तभी उन्हें सूचना मिली कि कल प्रातः भगवान अहमदाबाद जाएंगे, वे तैयार रहें। ये सुनते ही कस्तूरी जी कमरे में मारे खुशी के कूदने लगे और उन्होंने बाबा की फोटो के सामने साक्षात दंडवत कर उन्हें प्रणाम किया। उन्हें लगा कि शायद बाबा ने उन्हें अब माफ कर दिया है। लेकिन जब वे सुबह तैयार होकर बाबा के साथ जाने के लिए पहुंचे तो उन्हें पता चला कि स्वामी ने उन्हें वापस पुट्टपर्ती लौट जाने को कहा है। कस्तूरी जी हताश हो गए। वे पुट्टपर्ती वापस आकर सनातन सारथी के प्रकाशन और वितरण के कार्य में लग गए। बाबा के प्रति पहुंचने के बाद वे यथासमय बाबा के कमरे में जाते और बाबा से बात करने की प्रतीक्षा में चुपचाप खड़े रहते, किंतु बाबा ने उनसे कई दिनों तक बात नहीं की। बात करना तो दूर, उनकी ओर देखा भी नहीं। कुछ दिनों बाद कस्तूरी जी कुछ पारिवारिक काम से बेंगलुरु चले गए अपनी बेटी के पास। जब उन्हें सूचना मिली कि स्वामी भी वहां अपने व्हाइट फील्ड स्थित वृंदावन आश्रम आए हैं तो वे फौरन दर्शन के लिए गए। बाबा के कमरे में जब वे पहुंचे तो स्वामी उन्हें देख मुस्कुराए। ये देख कस्तूरी जी ने साहस करके अपने नाती प्रसाद के टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में प्रवेश की सूचना उन्हें देनी चाहिए। तब भगवान ने कहा, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम किस मद में चूर हो। तुम्हारा अहंकार इतना बढ़ गया है कि तुम्हारा सिर फट जाएगा। कस्तूरी जी कुछ समझ नहीं पाए, परंतु वे बहुत खुश थे कि चलो स्वामी ने उनसे बात तो की। फिर स्वामी ने उन्हें एक पर्चा दिखाते हुए कहा, यह क्या है? यह पर्चा कस्तूरी जी के उड़ीसा के कार्यक्रम की सूची थी और स्वामी उनके सुबह 10 से 11 बजे के शेड्यूल के बारे में पूछ रहे थे, जिसमें लिखा था इंटरव्यू विद प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, अर्थात जानी मानी हस्तियों के द्वारा साक्षात्कार। कस्तूरी जी ने कहा, स्वामी कोलकाता जाते समय वहां के संयोजक ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं कुछ स्थानीय अध्यापकों और अन्य लोग जो स्वामी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं उनसे मिलना चाहूंगा, तो मैं राजी हो गया। स्वामी ने पूछा, लेकिन जब तुम्हें यह पता चला कि उन्होंने ऐसा लिखा है तो क्या तुमने उन लोगों से कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ऐसा लिखना गलत है? नहीं कहा, क्योंकि तुम आत्ममुग्ध हो गए प्रबुद्ध लोगों के साथ अपने साक्षात्कार के बारे में सोचकर। कस्तूरी जी रोते हुए श्री चरणों में गिर पड़े। भगवान ने प्रेम से उन्हें उठाते हुए कहा कि जाओ, तुरंत जाकर उन्हें तार भेजो और कहो कि यदि आइंदा उन्होंने ऐसा किया तो तुम दोबारा कभी नहीं आओगे। श्री कस्तूरी जी कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूं उड़ीसा में मेरी असफलता का कारण। ये वाकई एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक चूक थी, जिसे भगवान ने कृपा करके सुधारने का निश्चय किया। तो चलिए, इस समझ के साथ हम सब इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं।
मधुवन संचारी श्याम मुरारी, मधुवन संचारी श्याम मुरारी, मधुसूदन मुरलीधारी, श्री मधुसूदन मुरलीधारी, मधुवन संचारी श्याम मुरारी। माधव मोहन मयूर मुकुटधर, माधव मोहन मयूर मुकुटधर, गिरिधारी। मुरलीधारे मधुवन संचारि श्याम मुरारे माधव मोहन मयूर मुकुटधर गिरिधारे मधुरानाथ साई गिरिधारे मधुवन संचारि श्याम मुरारे।
इसी के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण के कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। जय साईं राम।